نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربيع الأول کا مہینہ ما شاء الله سے بھی چل رہا ہے، اور مختلف لوگ مختلف انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں نبی پاک، ہمارے نبی پاک آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو محبت تو ہر بندہ مومن کے دل کے اندر خون کے قطرے میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی. اب اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ عشق رسالت کو منانے کا یا اپنی محبت کو اظہار کرنے کا کیا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، کیا غلط ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. جو بات متفق ہے، جس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، کہ عشق رسالت الحمدللہ ہر فاسق فاجر گناہگار مسلمان بھی رکھا، کیونکہ اس کے خون میں اللہ پاک نے یہ چیز رکھی، اپنی محبت، اپنی توحید اور نبی پاک آخر ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے اب تک ہم موازنہ کریں کہ کس کس نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثاری اور اپنا عشق کا اظہار کیا تھا، تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے سر فہرست نام ہے. جب شروع کے دن تھے، نیا نیا اسلام پروان چڑھ رہا تھا، چند لوگ گنے چنے تھے. سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، پھر اس کے بعد ترتیب آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طرح سے پھر معاملہ بڑھتا گیا. تو یہ شروع کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار فرمایا، کہا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جب ہم حق پر ہیں تو ہم کعبۃ اللہ شریف میں کیوں نہ چلیں، اور وہاں جا کے اعلان توحید آپ کیوں نہیں کرتے، ہم سب آپ کے ساتھ چلیں. لیکن کا اشرار بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پسندی سے کام لیا. تو سخت مسلمانوں کا جو دور تھا اسلام کا، بہت کمزور دور تھا. لیکن جب اصرار بڑھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، اور پھر تشریف لے گئے چند صحابہ کے ساتھ، سب چنی تھے. اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی اور توحید کا اعلان کیا، تو اس کے بعد ایک مجمع میں بھگدڑ مچ گئی، جتنے بھی کفار مکہ تھے. تو اور حضرت یہ بھی پتا تھا کہ ان لوگوں کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا جو ان کا معاملہ ہے انہوں نے کیا ہی. تو جتنے بھی مجمع تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آنے لگا، اور آپ اسلم کی طرف بھی کچھ لوگ بڑھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اور وہ آپ اسلم کو انہوں نے کور کیا. صحابہ تھے وہ آپ اسلم کو لے گا، تشریف لے کے چلے گئے، لیکن اکیلے پھر وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے. اور پھر اتنا ان کو مارا پیٹا کہ لہو لہان کر دیا تھا، کہنے ان کا ماتھا پھٹ گیا تھا، چہرہ پھٹ گیا تھا، خون آلود ہو گیا تھا. اور یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کو پھر کندھوں پہ گھر پہ اٹھا کے لے کر آیا. اور جب گھر میں ان کو لے کر آ گئے، اور اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھے، آدھے جاگ رہے تھے، آگے بے ہوش تھے، اور بھوکے پیاسے بھی تھے، نہ کھا رہے نہ پی رہے، کیونکہ منہ پورا اندر سے زخمی تھا، کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے تھے. اس طرح دو تین دن گزر گئے، حالت نہیں سنبھلی. تو ان کے والدین بتاتے ہیں کہ ذرا سا ہوش میں جب آتے تھے تو یہ پوچھتے تھے آپ کی کیسی طبیعت ہے، کس حال میں، تو کہتے تھے مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوا. کہتے نہیں ان کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل خیریت سے. پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر اٹھتے، پھر یہ پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں ہوا. اس طرح کرتے کرتے جب ان کو تھوڑی سی نقاہت وغیرہ میں کچھ کمی آئی، لیکن اٹھ پھر بھی نہیں سکتے تھے، کہا آپ لوگ مجھے تسلی دے رہے ہیں، مجھے سکون نہیں ملے گا، تسلی نہیں ملے گی جب تک کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا صحیح بیٹھا ہوا. कहेंगे मुझे लेके चलो, लोगों ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माने, तो फिर उठने की कोशिश की तो फिर गिर पड़े, यह हालत थी। लेकिन फिर दोबारा उठने की कोशिश की तो लोगों ने फिर मजबूर होकर घर वालों ने कुछ साहब ने उनको उठाया और कहेंगे अच्छा आप चलने आप नहीं मान रहे थे। फिर जब देखा अफसलम को ले जाके दिखाया, देखेंगे बैठे, फिर अफसलम भी उनको देख के गले लगे रोए, उनको अपने पास बिठाया उनकी हालत के ऊपर। तो ये वो इश्क था कि कयामत तक के लिए दिखा दिया कि अपनी जान की बाजी लगा दी। और फिर गारे वहां पे गारे सौर का भी वाक्य, जब अफसलम वहां पे तशरीफ लेकर गए थे, दुश्मन पीछे लग गए थे, उस वक्त भी क्या था कि कहते हैं जो कुर्ता हजरत बकर सदीक रजी अल्लाह तआला ने अपने कुर्ते को फाड़ फाड़ के सुराखों को बंद कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां सो रहे हैं, आप सल्लम की गोद में सर रहे। क्या कुर्ता था, क्या माहियत थी, तो सो रहे हैं। अब इस तरह से कि ये भी ना उठे और मैं सुराख भी बंद कर दूं तो कमीज फाड़ फाड़ के लगाते रहे, इस तरह कह रहे पूरी कमीज तार तार हो गई लेकिन एक सुराख फिर भी रह गया। बस फिर वहीं से सांप निकला। और फिर वो उन्होंने फिर उस वक्त हजरत बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि कपड़े तो खत्म हो गए, क्या लगाऊं, तो अपनी एड़ी लगा दी थी वहां। अब बताइए कितने तकलीफ में, क्या अफसलम को भी नहीं उठा रहा है, गोद में अफसलम का सर रखा और अपनी टांग उठा के एड़ी जो है दीवार पे टच कर दी, सुराख बंद कर दिया। अब वहां एक सांप का बिल था और मुहदीसीन फरमाते हैं कि वो जिन्नातों में से था और उसको खबर मिली थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त आएगा इस गार में आके कयाम पजीर होंगे, तो वो ज़ियारत का मुश्ताक था। अब उन्होंने एड़ी रख दी, अब उनको क्या पता, एड़ी रख दी तो गहरी बात है उनको गुस्सा आ गया, यार मैं ज़ियारत के नहीं आया, उन्होंने तो पूरा दरवाजा ही बंद कर दिया, मैं कैसे ज़ियारत करूँ। फिर उन्होंने डस दिया, जब डस दिया सांप ने डस दिया उनकी एड़ी को, अब बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, इतना बर्दाश्त किया कि आंखों से आंसू टपकने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं उठाया क्योंकि नींद खराब हो जाएगी। इश्क़े रिसालत की बातें होती है ना भाई, तो ये थोड़ा सा कुछ दिल में आ रहा है कि इश्क़े रिसालत कहते किसे। आज हम वहां इश्क़े रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आज जो हम जो अपने इश्क का इजहार करते हैं वरा आपस में इंटरलिंक तो करें तो मुमासलत नजर आती है। इश्क कहते किस शय का नाम है, किस चीज का नाम है इश्क। तो फिर उसके बाद इश्क का अंदाजा लगाइए, किसी को सांप काट ले अल्लाह ना करे और तकलीफ से चेहरा सुर्ख हो रहा हो और ये पता हो जहर फैल रहा है, मेरी भी मौत वाकई हो जाएगी और बर्दाश्त और तकलीफ से आंखों से आंसू टप कर रहे हो लेकिन अपने महबूब को कोई नहीं उठा रहा, ये क्या चीज है, ये मामूली चीज है, ये कहलाता है इश्क। जब वो आंसू टपके तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, आंसू से क्यों रोते हैं अबू बकर, यार रसूल अल्लाह सांप ने डस लिया, मैंने सुराख के ऊपर पैर रखा था कि कोई सांप वगैरह ना आ जाए। आप उठे, दुआ की, लुआबे दहन लगाया जहाँ पे सांप ने काटा था, बहरहाल वो बिल्कुल सही हो गया, सब जहर वगैरह सब खत्म। तो ये इश्क की अदना सी मिसालें थी, छोटी सी, जो सहाबा कराम ने पेश करी, कयामत तक के लिए बता दिया। देखो इश्क रिसालत इसे कहते हैं। इसी तरह हजरत अली करम अल्लाह का वाक्य है दामन उहद का, एक दुश्मनों ने अफवाह फैला दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो सहाबा के हौसले भी बिल्कुल खत्म हो गए थे, उखड़ गए थे, बेदिल हो गए, नाउमीद हो गए, कुछ सहाबा मैदान छोड़ के चले गए नाराज होकर, जब आप सल्लम ही नहीं रहे तो अब लड़ने का क्या फायदा, और कुछ जमे रहे डटे रहे, कुछ से कुछ गलतियां चूक हो गई थी कि आप सल्लम ने मना फरमाया था इस घाटी को मत छोड़ना जब तक मैं ना कहूँ, क्योंकि इस्लाह और तरबियत का जमाना था, आहिस्ता आहिस्ता स्लोरी थी चूक हो गई। बहरहाल फिर उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने जो सख्त ईमान नहीं लाए थे, वो बहुत जहीन इंसान थे, तो उन्होंने ये मुसलमानों की कमजोरी देख ली थी कि मुसलमान जो हैं ये फतह समझ के और ये माल गनीमत जमा करने में लग गए। तो जाते हुए जो कुफार थे हजरत खालिद बिन वलीद रजी ने देखा कि इन्होंने सब अपनी घाटियां वगैरह अपनी जो जराएं थी छोड़ के और ये लोग माल गनीमत लेने के नहीं आ गए, तो उन्होंने जाते जाते वापस पलट के और फिर हमला किया, बहुत ही खतरनाक। और फिर कहते हैं कि बहुत जबरदस्त मुसलमानों को जानी नुकसान हुआ, कि 70 सहाबा कराम जो हुफाज में से थे तो उनकी शहादत भी हो गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। बहरहाल तो उसी दौरान जिहाद का वाक़ है कि जब ये भगदड़ मच गई थी और बिल्कुल एक अफरा तफरी का आलम था, मुसलमानों के हौसले उखड़ गए थे, आप सल्लम के बारे आप सल्लम कहीं नहीं दिख रहे थे और ये मशहूर कर दिया था आप सल्लम की शहादत हो गई, तो सहाबा कराम को संभालने वाला भी नहीं था, तो तो मुंतशिर हो गए वो। हजरत अली करम जो फरमाते हैं कि मेरा भी बहुत बुरा हाल था, तो मैंने पहले जो शोधा थे उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया तो मुझे शोधा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं है। फिर मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह मैदान छोड़ के चले जाएं जिहाद से, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कहा फिर मेरे दिल में ये बात आई कि हमारे इस खता और गुनाह की वजह से कि हमने आप सल्लम के हुक्म की इत्तेबा नहीं करी और अपनी जगहों को छोड़ दिया था, शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाराज होके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह शायद उनके दिल में ख्याल आया। और उनके दिल में ख्याल है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मौजूद नहीं रहे तो मेरा भी जीने का क्या फ़ायदा। तो फिर उन्होंने सोचा चलो शहादत भी मिल जाएगी और जीने का कोई फ़ायदा भी नहीं, तलवार ली और जो सबसे खतरनाक दुश्मन की घाटी थी वहाँ तलवार चलाते हुए अंदर घुस गए। अब ये जो मंजर है ना ये बतानों से किताबों के अल्फाजों से हम समझ नहीं सकते, दाएं तरफ कुफार बाएं तरफ कुफार और सैकड़ों की तादाद में, कहते हैं दोनों हाथों में तलवार थी हजरत अली करम जो, जब उन्होंने तलवार चलानी शुरू करी है जब वो अंदर चले उस रो में, तो कह रहे हैं कि गर्दने कटते हुए ऐसी गई थी, गर्दने कटते हुए ऐसी गिरती थी कि जैसे कि फूलों की लड़ियां होती है ना, जैसे फूलों की टहनी और कोई चाकू से या किसी तलवार से न्यू ऐसे फूलों को काटे तो क्या होगा कि फूल ऊपर से कट जाएंगे और उनकी छड़ियां रह जाएंगी। तो इस तरतीब से हजरत अली करम ने उनकी गर्दनें उड़ाई, तो देखने वालों को समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, तो वो क्या जवां मर्दी थी। और यहाँ तक कि वो बिल्कुल आखिर में एंड में पहुंच गए और देखा तो वहां आप सल्लम उनको नजर आ गए और तमाम कुफार जो थे वो आप सल्लम के ऊपर झपटने की कोशिश कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उनसे मुकाबला कर रहे थे। तो हजरत अली करम जो फरमाते हैं मुझे देख के सुकून मिला, खुशी हुई कि अल्लाह पाक ने हमारे नबी सल्लम की हिफाजत अपने मलाइका के जरिए करी, वरना बड़ा मुश्किल था। बहरहाल उसके बाद हजरत अली जो जब करीब गए आप सल्लम के, तो आप सल्लम फरमाए अली इस जमात को रोको जो मेरी तरफ बढ़ रही है। फिर तन्हा अकेले हजरत अली करम ने पूरी जमात को पूरी बटालियन को खत्म किया। फिर बाएं तरफ से वो बटालियन आई पूरी जमात कुफार की, फिर आपने फरमाया अली इस तरफ से देखो, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने फिर अकेले तन तन्हा मुकाबला किया और उन सबको खत्म किया अकेले तन तन्हा। तो इस असना में जब फतवाहत हासिल हो गई आप इस्लाम की, अल्लाह ने जिंदगी बख्श दी बचा दी, तो जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने हजरत अली करम अल्लाह वजह की जवां मर्दी बहादुरों की तारीफ करी और कहा मुझे अल्लाह ने भेजा है और इन्होंने जो मार्क अंजाम दिया है ना काबिले बयान ना काबिले यकीन, क्योंकि वही बात कहेंगे बातें लफावों से किताबों से हम उसकी मंजर कशी नहीं कर सकते, तो वो क्या मंजर होगा, क्या उनकी दिलेरी बहादुरी होगी, क्या इश्क रिसालत होगा कि अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया, जिब्राइल अमीन आ गए तारीफ की नहीं और उनकी खूब तारीफ करी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाया कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, और जिब्राइल अमीन ने फरमाया और मैं आप दोनों से हूँ, मैं आप दोनों से हूँ। तो ये अकेले तन तन्हा इतने बड़े मजमे से भिड़ जाना और अपने सर पे कफन बांध लेना और अपनी जान की परवाह ना करना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं रहे तो मेरे जीने का क्या फायदा, ये था इश्क़े रिसालत। इश्क़े रिसालत कहते ना हजरत शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, मोहब्बत मोहब्बत तो कहते हैं सभी, मोहब्बत मोहब्बत तो कहते हैं सभी, मोहब्बत मोहब्बत नहीं जिसमें शिद्दत नहीं, जब तक मोहब्बत में शिद्दत नहीं होगी कैसे मोहब्बत के हम अपने आप को काबिल कर सकते। तो जो आशिकीन होते हैं उन्होंने जिन्होंने इश्क किया रसूल अल्लाह आकद हो जहाँ नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने ज़बानी दावे नहीं किए, उन्होंने खाली हलवे मांडले खा के अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, उन्होंने बिरयानियाँ खा के और गा गा के उछल उछल के जो है ना उन्होंने इजहार नहीं किया, ये तो मज़े आ रहे हैं तो रंगीनी है, तो ये क्या इश्क है, इश्क में तो खून भी तो बहाना पड़ता है, बार दफ़ा जान देनी भी पड़ जाती है, देनी भी पड़ जाती है इश्क में। तो ये सहाबा कराम ने करके दिखाया, हजरत अली करम ने करके दिखाया, अपनी जान भी निछावर करने के लिए सर पे कफन बांधा और उसके बाद जान ली भी कुफार की, तो इश्क रिसालत में तो कहाँ तक बयान करें। इसी तरह इसी जंग उहद का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जो सर के ऊपर जो लोहे का खोद होता था जो जंगी टोपी कहलाती है हिफाजत के लिए, लोहे के पूरी वर्दी वगैरह उस जमाने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल और असहाब ये सब पहना करते थे हिफाजत के लिए। तो लोहे की जो टोपी थी उसमें कुछ लंबे लंबे दांते निकले हुए थे, तो वो टूट के दौरान जंग वो उसकी कील जो थी इसकी उस खोद की वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक के अंदर घुस गई। अब उससे खून जारी हो गया। अगर अजियत आप देखिए खोद का दामन सूरज गर्मी, ये इस्लाम ऐसे नहीं फैला भाई, सोचने वाली बात है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारी शख्सियत कायनात में ना कोई थी ना है ना होगी। उनके आल और असहाब का खून गिरा जमीन के ऊपर अल्लाह ने गिरना गवारा कर लिया, उसके बाद इस्लाम की शुरुआत हुई है। जब तकलीफ होने लगी खून आलू रसूल का चेहरा अनवर पूरा सुर्ख हो गया खून से। एक सहाबी रसूल थे, नाम क्या है, नाम याद नहीं आ रहा, सहाबी फजाइल अमाल में वाकई 12 वर्ष। तो उन सहाबी रसूल ने देखा तो आप समझो खून जारी हो गया, फिर उन्होंने अपने दांतों से वो जो कील जो घुस गई थी मोटी दांतों के अंदर उसको पकड़ा दांतों से। अब जरा तसव्वुर कीजिए लोहे की कील को दांतों से पकड़ना, और फिर अच्छी तरह पकड़ के उसको इस झटके से खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों से तो वो कील निकल गई लेकिन उनके आगे के कह रहे सारे दांत टूट गए और वो खुद लहूलुहान हो गए। ये थी मोहब्बत, ये था इश्क, ये थी मोहब्बत और ये था इश्क। कहां तक बयान करें इश्क रिसालत को, सच्चा इश्क कहते किसे, अमली इश्क कहते किसे। औरतों का इश्क कैसे था, कितनी साहबियात थी, कितनी साहबियात की जाने निकल गई। जब तकफीन हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आके पूछती थी आप सल्लम की लहजे मुबारक कहाँ पर है, बता भाई यहाँ तकफीन हुई, वो देखती थी सलातो सलाम पढ़ा और एक चीख मारी और बस उसी वक्त खत्म हो गई, इंतकाल कर दी। कई खवातीन कई साहबियात जान दे दिए आप सल्लम की अकीदत में मोहब्बत में, आप सल्लम ही रहे तो जीने का क्या फायदा। इसी तरह इसी उहद के दामन के वाकयात में जब कुछ खवातीन थी वो जो पहली बात है मदीने में थी, तो उनको इत्तला हुई कि भाई तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया जिहाद में, तो घर से निकल गई मैदाने उहद की तरफ आने लगी। तो रास्ते में कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि तुम बड़े अफसोस से कहना पड़ा है कि इस जंग में तुम्हारे वालिद साहब शहीद हो गए। उन्होंने कहा मुझे छोड़ो वालिद साहब को बताओ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे। फिर आगे बढ़ी फिर कोई दूसरी को खातून मिल गई, उन्होंने कहा इतना मिली है तुम्हारा जवान बेटा भी शहीद हो गया। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि, उन्होंने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बताओ रसूल अल्लाह कैसे। आगे बढ़ी फिर और आगे बढ़ी, तो फिर किसी ने कहा अरे बड़े अफसोस से कहना पड़ा है तुम्हारा शोहर भी अल्लाह को प्यार हो गया शहीद हो गया। फरमाया अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, ये बताओ रसूल अल्लाह सल्लम कैसे, किसी की परवाह नहीं कर रहे साहबियात, ये बता दो बस रसूल अल्लाह सही है, उनको तो कुछ नहीं हुआ, बस वो सही है तो फिर ठीक है। क्या इश्क रिसालत था, बाप की इत्तला मिली, शोहर की मिली, जवान बेटे की इत्तला मिली शहादत की, कह रही है बस ठीक है अल्लाह मगफरत फरमाए मैं सबर करती हूँ, बस रसूल अल्लाह का बता दो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या लोग थे वो लोग, क्या उनका इश्क था, कहां तक बोले अल्लाह। ये सिलसिला फिर रुका नहीं इश्क रिसालत का, लोग दीवाना बार आप सल्लम पर फिदा होते गए, होते आ रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, कयामत तक आशिकीन जो सच्चे आशिकीन होंगे उनका अपना इश्क का इजहार करने का तरीका वो सबसे जुदा रहेगा। जो सच्चे आशिकीन होते हैं वाला शोर शराबा नहीं करते, बोलते नहीं है, वो झंडे नहीं गाड़ते कि जो जितना शोर मचा रहा है उतना बड़ा आशिक आशिक रसूल। जो सच्चे आशिक होते हैं वो अपना काम करके दुनिया से चले जाते हैं, तो पता भी नहीं चलता दुनिया वालों को कि वो क्या काम करके चला गया इश्क रिसालत। बहरहाल इसी तरह एक नाम अभी जो हम ये कलाम सुना कसीदा बुर्दा शरीफ मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबदन आला हबीबी का खैर खल्की कुल्लिहिम, ये हम सुनते तो रहते हैं, इसकी तारीख क्या है बाज लोगों को पता है बाज लोगों को नहीं पता। हजरत इमाम बुसेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, कई सदियां पुरानी बात है, इनको फालिज गिर गया था और बहुत इलाज कराया, इनको शिफा ना हो सकी। तो एक बार रात में रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और आपने इरशाद फरमाया, बुसैरी तुमने मेरी मोहब्बत में जो वो कसीदा लिखा है वरा उसके कुछ अशआर तो सुनाओ। अब ये वो अशआर थे कसीदे के कि जो हजरत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह फरमाते, मैंने जिंदगी में रूए जमीन में किसी को नहीं बताए थे ना सुनाए थे, किसी को नहीं पता था। बहरहाल वो फिर मैंने अशआर ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए, यही मौलाए अरसली वसल्लम दाइमन अबदन। तो वो फरमाते हैं कि मैं जब सुना रहा था पूरा कसीदा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कैफियत तारी थी सुरूर की, बहुत खुश थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब ही मैंने कसीदा पूरा सुना दिया तो बस फिर जब छोटे कुछ बड़ों को तोहफा हदिया देते हैं छोटे बड़ों को तो वहां से भी कुछ मिलता है, तो उन्होंने तो अशार पेश किए, फिर आखिर में दरवाजा बरकतों का खुला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुशेरी क्या चाहता है अल्लाह से, क्या दुआ करूं, क्या मांगता है अल्लाह से बता। मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देख रहे हैं मुझे फालिज गिर चुका है, दुनिया का इलाज करा गया, शिफा नहीं हो रही, उठ नहीं सकता। अच्छा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और उनके जिस्म के ऊपर हाथ फेरा, दुआ की और हाथ फेरा जिस्म, और फिर उन्हें हदियतन एक तोहफतन एक चादर दी, जमनी चादर, और उसके बाद आंख खुल गई। जब वो उठे तो तकरीबन फजर का वक्त होने वाला था, जब उनकी आंख खुली तो देखा सिराने हकीकत में चादर रखी हुई और उनका फालिज बिल्कुल सही हो चुका था। रोने लगे खुशी में, सजदा शुक्र अदा किया। अब कसीदा बुरदा शरीफ का कसीदे उन्होंने कई लिखे थे, बुरदा अरबी में कहते हैं चादर को, वो कसीदा जिसमें चादर आ गई थी कसीदा बुरदा शरीफ, तो बस दुनिया समझ जाती है कि ये किस कसीदे की बात हो रही है। उसके बाद उनको बहुत उरूज भी मिला था, शोहरत भी मिली थी इस वाक्य से और फिर उसकी बहुत बरकत है इस कसीदे बुरदे शरीफ बुरदा शरीफ। बहरहाल अभी ये उठ के सजदा शुक्र अदा कर रहे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला देखा वो बुजुर्ग खड़े हुए, तो वो कहते हैं बुजुर्ग आने वाले बुशेरी अहमदुल्लाह अलैहि से कि अभी जो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अशआर सुनाए वो फलां शेर भूल गया, जरा मुझे बताइए वो शेर कौन सा था। वो तो हैरान हो गए इमाम बुशेरी रहमतुल्लाह ने कहा, आपको कैसे पता, ये तो मेरा अल्लाह रसूल का राज है, मैंने जिंदगी में किसी को अशआर नहीं पता है, मेरे घर वालों को भी नहीं पता, आपको कैसे पता चला आप कौन है। यहाँ से राज की बातें आउट होती हैं, ये उलमा कराम ने किताबों में लिखी है बातें, ये ऐसी कोई गैर अहम बातें नहीं है। वो आने वाले बुजुर्ग फरमाते हैं जिस मजलिस में आप सरकार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप ये कसीदा पढ़ के सुना रहे थे उस मजलिस में ये फकीर भी हाजिर था। पता चला जो कुछ औली अल्लाह ऐसे भी होते हैं जो जिंदा भी होते हैं और रसूल अल्लाह सल्लम की मजलिस भी अटेंड करते हैं और उसमें वफात शुदा भी औली अल्लाह होते हैं और क़यामत तक हमारे प्यारे मुर्शिद आरिफ़ मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह ने सारी किताबों में हवालों के साथ लिखे ये वाकयात, हज़रत आलिम भी थे और दूसरे उलमा कराम ने भी वाकयात की तस्दीक करी और फरमाया हज़रत ने कि क़यामत तक आक़े दुजान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसें लगती हैं और उसमें ऐसे खुश नसीब लोग होते हैं जो उसमें शिरकत भी करते हैं। अब सोचें कि उस मजे का और कैफ और सुरूर का क्या आलम होगा, क्या आलम होगा। बहरहाल उसकी फिर बहुत बरकतें, फिर बादशाह वक्त तक ये खबर पहुंची, ऐसा कसीदा उन्होंने लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर दे दी और हकीकत में आ गई वो चादर। बहरहाल फिर वो बादशाह वजीर के साथ आया और उनके हाथ पैर जोड़े और फिर वो कलाम मांगा, फिर उन्होंने उसको दिया बादशाह को उन्होंने, और फिर उन्होंने ये भी फरमाया तो हाजतमंद तो बीमार कोई भी आप सल्लम पर ये कसीदा बुरदा शरीफ पढ़ा करेगा और फिर उसके जरिए से वसीले से अल्लाह पाक से दुआ करेगा तो इंशाल्लाह उसकी अल्लाह आजतें पूरी फरमाएंगे। फिर वजीर का बेटा जो था नाबीना था, तो फिर जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसके बेटे की बिनाई भी फिर बहाल हो गई थी। अभी भी हमारे एक पीर भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं ख्वाब में मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए और हजरत की खानका में गुलशन में और हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह भी वहाँ बैठे हुए थे और आप सल्लम भी तशरीफ़ फरमाए, तो कोई साहब बैठे हुए थे और जो ख्वाब देख रहे थे वो भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहब उनके बराबर में बैठे हुए थे जिनको नहीं जानते, तो उनका नाम बुरहान गालिबन शायद उन्होंने बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुरहान साहब बहुत ही प्यारे हैं, मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है। और फिर आप सल्लम फरमाते हैं वो इसलिए कि मुझ पर कसीदा खुर्दा शरीफ पाबंदी से पढ़ते हैं। और जो जो बहुत जो साहब बहुत देख रहे थे उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लम जब उनकी तारीफ कर रहे थे लेकिन टेढ़ी नजरों से मुस्कुरा के मुझे देख रहे थे। क्या मतलब हुआ? ये आशिकों की अदाएं होती हैं, अदाएं होती हैं, बराह रास्त नहीं का तो भाई मुझ पर तुम कसीदा खुर्दा शरीफ पढ़ो, आग लगाई जाती है, आतिशीश भड़काई जाती है, दूसरे की तारीफ करके तीसरे को उभारा जा रहा है, उभारा जाता है। देखो मैं इनसे इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि कसीदा खुर्दा शरीफ पढ़ता हूँ, देख किसी और को रहा मुस्कुरा के, तो उसमें इशारा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहते हैं ना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। क्योंकि हजरत वाला रहमतुल्लाह हमारे मुर्शिद फरमाते थे जो बहुत हसीन और जमील हो, कोई औरत हो, लड़की हो और मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड में अव्वल नंबर आई हो, तो जब वो सड़क पे चलेगी तो किसी को नहीं कहेगी कि मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो, कभी नहीं कहेगी। वो तो एक शाने बेएतनाई के साथ, फखरन और मगरूरियत के साथ एक स्टाइल में चल के जाएगी और किसी को नहीं देखेगी। वो उसको पता है कि मैं देखू ना देखू दुनिया मुझे देख रही है, मैं हूं इतनी हसीन, मिस वर्ल्ड हूं मैं, मुझे अव्वल नंबर आई है दुनिया में, तो वो खुद नहीं कहेगी मुझे देखो, क्योंकि उसको पता है मैं हुई इतनी हसीन की दुनिया मजबूर होगी मुझे देखने को। सिर्फ दुनिया के पलीत हसीनों का ये हाल है। तो आप क्या समझते हैं आखिर तो जहाँ रसूल अल्लाह सल्लम कहेंगे मुझे देखो, मुझसे मोहब्बत करो, मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ो, मुझ पर कसीदा खुर्दा शरीफ पढ़ो, उनको क्या जरूरत है? ये तो बाग आशिकीन के अंदर जो आतिशीश की कुछ चिंगारी होती है उसको भड़काने की नहीं, इस तरह की कुछ चुटकुले छोड़े जाते हैं ताकि आतिश में इजाफा हो जाए, आग भड़क उठे। इस 10 या 20% अगर आग है तो बड़े जरा सा एक महबूब के इशारे से उस आग में 20% इजाफा होके वो 100% इजाफे में तब्दील हो जाए। इश्क तो होता है, जब सर्दी में हम देखते हैं ना अंगीठी में कोयले होते हैं उस पर आग आ जाती है, हम समझते हैं अच्छा सर्दी की ऐसे बुझ गए अंगारे, अंगारे बुझे नहीं है भाई, जरा सा पंखा मारो, जैसे हम पंखा चलाएंगे ट्रेडिशनल फैन या हाथ से उसको हिलाएंगे बड़ा सी हवा देंगे तो एकदम से वो राख हटेगी और एकदम से सुख अंगारा आपको नजर आ जाएगा, और जरा हवा देंगे तो आग लग जाएगी। तो बस, तो बाद दफा आग लगाई जाती है, अंगारे तो है, चिंगारी तो है, लेकिन उसको बाद दफा आग लगाई जाती है ऊपर की तरफ से ताकि इसमें इजाफा हो, एक जुमूद सा आ जाता है। बेखुद किए देते हैं अंजाज अंदाज हिजाबाना, शायर कहता है ना बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, क्या मतलब? मस्त हो रहे हैं, बेखुद हो रहे हैं, कौन से अंदाज हिजाबाना, पर्दे में पूरा महबूब साफ नजर आता भी नहीं है, दिखता भी नहीं और छुपता भी नहीं है। महबूब जो है पूरा दिखता भी नहीं और पूरा छुपता भी नहीं। अब दुनिया की कोई माशूक हो, महबूबा हो, अब मिस्टर आशिक दीवाना हो और जिद कर रहा हूँ अपना दीदार करो, बहुत जिद कर, उसने कहा अच्छा ठीक है दीदार कराती हूँ, उसने क्या किया अपना पल्लू लिया दुपट्टे का यूं करके लहरा दिया। अब तो और तलब गया भाई, वो कहेगा मैंने तो दीदार का कहा था, तुमने तो ये मुझे पल्लू लहरा के और दीवाना बना दिया, फिर दूसरी तरफ का पल्लू लहरा देगी। तो वो तड़पा रही है भी, वो खेल रही है उससे ताकि आतिशीश खूब भड़के। बहुत रोया पीटा, उसने कहा क्या तुम पल्लू पर पल्लू दिखा दियो, चेहरा तो दिखाओ। उसने कहा हाँ देखते हैं भी देखते हैं, अभी मेरे हाथ देख लो। तो उसने यूं करके हाथ दिखा दिए, अपने हाथ देख के फिदा हो गया, कितना हसीन हाथ है। तो ये बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, ये मतलब है कि हिजाब में कुछ ऐसी अदाएं दिखाई जा रही है कि पर्दा भी है, महबूब साफ नजर आता भी नहीं और छुपता भी नहीं। भाई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा, ये इश्किया बातें चल रही है, जो इश्किया ध्यान रखने वाले भाई वो समझेंगे ये क्या बातें हो रही है। होता क्या है, वो जो महबूबा जो है वो आतिशीश भड़काना चाह रही है ताकि जब बसर हो जाए मिलाप हो तो ऐसा मजा आए कि बस कि मजे को भी मजा आ जाए। क्योंकि अंदाज हिजाबाना के बाद
जब वसल होता है, मिलाप होता है, तो फिर वसल और मिलाप की लज्जत हजारों गुना बढ़ जाती है। इसलिए अल्लाह रसूल की तरफ से तो असल में मिसाल दी जाती है इश्के मिजाजी को इश्के हकीकी के ऊपर रख के फिर समझाया जाता है। यही हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने भी किया था और यही उलमा और मशायख समझाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अवामुन्नास समझ नहीं पाती, समझाने की नहीं, फिर करके फिर उसको घुमा के फिर दूसरी तरफ लेके जाया जाता है। वहां यही 1400 साल से अक्सर तरतीब चली आ रही है। बहरहाल, वरना कोई इश्के हकीकी का, इश्के मिजाजी का इश्के हकीकी से कोई मुआवजा नहीं है, ना ताल्लुक है, लेकिन समझाने को बात होती है। तो ये इश्के रिसालत की बातें होती हैं, इश्के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होती है। तमाम दूसरी रहमतुल्लाह का वाक़िया था ये, और इसी तरह हजरत जामी रहमतुल्लाह का भी मशहूर वाक़िया, ये भी काफ़ी कई सदियों पुराने एक औली अल्लाह गुजरे हैं हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने कुछ फारसी में अशार लिखे थे और उन्हें इरादा किया था, कसद किया था, मैं रोवे रसूल सलम पे मदीना जाके आप सलम को खुद बराह रास्त सुनाऊंगा रोवे अकदस। बहुत ही गजब के अशार हैं वो, उसका तर्जुमा भी मिल जाएगा, किताब में आ चुका है वो। जब वो निकले बगदाद से, कहाँ बगदाद कहाँ मदीना, वो पुराना दौर था, खच्चरों पे, घोड़ों पे, ऊँटों पे लोग आया करते थे। तो आशिक रसूल थे, आलिम भी थे, निकले जब मदीना करीब आने लगा तो उनकी शौक और जस्तुजू का आलम बढ़ता गया, दीवानगी बढ़ती गई। तो जो उस जमाने के जो मदीना के गवर्नर कह लें, इंचार्ज कह लें, जो भी थे, बहरहाल उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चेहरा दिखाया और जामी रहमतुल्लाह कहा, देखो इस चेहरे का बंदा आ रहा है, ये इसका नाम है जामी, मेरा हुक्म है इसको मेरे रोजे पर नहीं आने देना। बहरी बात है, आखिर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, जो गवर्नर थे, जो सिक्योरिटी इंचार्ज जो भी थे, वो मदीने की सड़क के आगे खड़े हो गए, रोजाना उनकी ड्यूटी, चेहरा वैन में पक्का प्रिंट हो चुका था, पकड़ लिया, देख लिया, कहने लगे सब जा सकते हैं मदीना शरीफ, आप नहीं जा सकते। मेरा भाई मैं क्यों नहीं जा सकता, कहेंगे बस बता भी नहीं सकता, मजबूरी है। रोक दिया, बहुत जिद की, बहुत कुछ किया, नहीं मानेगा, ज्यादा जिद करोगे जेल में डाल दूंगा, बस जाओ, मदीने में एंट्री नहीं है तुम्हारी। अब इतनी तकलीफ उठा के आए, वो अशार लिख के लेकर आए भाई, सुनाने और उनको जाने नहीं जा रहा, बहरहाल नहीं जा सके, दूसरे लोगों को सबको जाने दिया, परेशान हुए, फिर दोबारा कोशिश करी, नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने सोचा चलो मैं भेष बदल के एक दो दिन में अपना भेष बदलता हूँ और फिर मैं जाऊँगा अंदर। फिर उन्होंने भेष बदला उस जमाने के हवाले से। फिर उस शख्स के बारे में, हजरत जामी रहमतुल्लाह के बारे में, आप सल्लम ने फिर दोबारा ख्वाब में तशरीफ लाए गवर्नर के, और फिर कहा देखो अभी सूर्य में आने वाला है, होशियार हो, इसका चेहरा पहचान लो, हुलिया बदल कर आ रही है। अरे हुलिया बदले, पहले से हुलिया बता दिया, फिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये क्या, बड़े हैरान हुए जामी रहमतुल्लाह के, इनको गैब का इल्म हो रहा, पता कैसे चल रहा है कि मैं वही हूँ। फिर उन्हें डांटा के देखो तुम भेष बदल कर आ रहे हो, मैं तुम्हें दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ, अब मत आना। फिर भगा दिया, बड़े परेशान रोने लगे, क्या करूं। फिर तीसरी उन्होंने ट्राई की, एक दो दिन के बाद गैप देने के बाद उन्होंने कहा चलो ऊंट जो होते उनके नीचे जो है वो अक्सर मुसाफिर जो होते थे लकड़ी का छीका सा बना दिया करते, इसमें एक आदमी आराम से आ जाता है, क्योंकि वो हाइट गैप जरा ज्यादा होता है, तो उसमें बच्चे वगैरह या कोई आदमी भी उसमें आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर चादर वगैरह कवर किया उसको ऊंट को, और लकड़ी का छीका सा बनाया एक जगह सी, और उसमें बैठ गए, और पूरा जब काफला जाने लगा ऊंटों को तो उसमें छुप के बैठ गए और ऊपर से चादर भी। अब गहरी बात है, अब तो कैसे किसी को क्या पता चलेगा कोई इतना अंदर तक बैठा हुआ। ये बात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम में आके उनको बता दें कि अब ये ऊंट के नीचे से तलाशी लेना शुरू करो, नीचे छुपा हुआ आ रहा है ऊंट के नीचे। अब उस दिन सारे जितने भी ऊंट आ रहे हैं नीचे से तलाशी होगी, फिर पकड़ लिएगा। उनको बड़ा गुस्सा है इंचार्ज को, कहता तुम बहुत डीट आदमी हो, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता, तुम मानते ही नहीं हो, तुम उसके सिवा कोई हल नहीं है, तुम्हें जेल में डाल दिया। उठा के वो जेल में डाल दिया जामी रहमतुल्लाह, जेल में डाल दिया। फिर आप दोबारा कौम में, ये होते हैं आशिकीन, चार चार दफा आ रहे हैं, एक अदना से उम्मती की नहीं तो कोई बात है ना। तो आपने ख्वाब में आके इरशाद फरमाया कि वो कोई डकैत नहीं है, बुरा आदमी नहीं है, चोर नहीं है, उससे बदगुमान मत हो, वो मेरा आशिक है, आशिक रसूल है। असल में माजरा ये कि उसने मेरी मोहब्बत में चंद ऐसे अशआर लिख दिए हैं और उसकी जिद है कि मैं वहीं आके पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद सुनाऊंगा, तो मुझे डर है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो मुसाफे के लिए रोजे से मेरे हाथ बाहर ना आ जाए, तो कयामत ही आ जाएगी ना। बाप इस सब वाकयात में लिखा है कहीं फरमाया कि मैं कहीं उठ के कहीं बाहर ना आ जाऊं, या कहीं लिखा है कहीं मैं मेरा हाथ मुसाफे के लिए बाहर ना आ जाए, तो कयामत ही आ जाएगी। मतलब क्या था, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, ये मुराद थी कि अगर वो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो आप सल्लम भी तड़प रहे हैं, इनको कह रहे हैं दूर करो मेरे पास से, कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसा ना हो कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊं, सीने से ना लगा लूं, मुसाफा ना कर लूं अपनी सुम्मति से। ये थे आशिकीन, इसके रिसालत कहते किसको, अल्लाह। फिर उन्होंने बहरहाल अशार भी सुनाए, सब कुछ हुआ। ये क्यों वाकयात हुए, ऐसा हो नहीं सकता था कि असलम उठ के खड़े हो जाते या कुछ हो जाता, तो कयामत हुई थी। मतलब ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत बता रहे हैं कि अगर कोई हमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करेगा तो हमें भी उससे, उसको भी हम उससे कहीं ज्यादा बढ़ के हम उसको चाहेंगे। इस पर मेरा बयान भी वेबसाइट पे मिल जाएगा इसकी तफसील के बारे में, कि इश्क से इश्क का अदना से अदना का इश्क से अदना का इश्क से आला को मुतवज्जे करना, इश्क से अदना का आला को मुतवज्जा करना। अपनी औकात हम ना देखें, अपनी हैसियत ना देखें, हम तो कुछ भी नहीं, क्या हमारा इश्क, क्या हमारी मोहब्बत आपसे, लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर हमने सही मायनों में इश्क कर ली कुरान कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लम के हिसाब से, अल्लाह रसूल के हिसाब से अगर हमने मोहब्बत कर ली उनके दिए हुए फॉर्मेट के हिसाब से, तो खुदा की कसम आतिश-ए-इश्क आग लग जाएगी हमारे दिलों में। ये मामूली बात नहीं है, उसमें वाकयात बताएं कि हम तो अदना है ना, वो आला हस्ती, अगर इश्क के सच्चा इश्क अगर हुआ तो चंद कतरे भी अगर हुए तो काम बन जाएगा, आला आला हस्तियां हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी। ये नहीं देखे हम अदना है, अगर इश्क सच्चा है, मनोरूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इश्क की जो सवारी होती है बहुत तेज रफ्तार होती है, बहुत तेज रफ्तार होती है। मशायख फरमाते हैं किरण बिजली की भी रफ्तार वो नहीं होती, जिब्राइल अमीन जो आसमान से आते हैं उनकी भी वो रफ्तार नहीं होती, जो इश्क की पावर रफ्तार होती है, रेस की जो रफ्तार होती है वो भी कुछ नहीं होती। जब इश्क की आग लगती है जिससे हम इश्क कर रहे होते हैं, रेस की शक्ल में इश्क और मोहब्बत के जज्बात वो सामने वाले के दिल के ऊपर असरअंदाज कर जाते हैं। मशहूर वाक्य है ना, हजरत सैयद शोरा सैदना हजरत अमीर हमजा रजी आपसलम बहुत मोहब्बत फरमाते थे, आपसलम के चचा बहुत ही प्यारे चचा थे, बहुत मोहब्बत फरमाते थे आपसलम। इनको जब शहीद कर दिया था वैशी ने, बाद में हजरत वैशी रजी कहलाए, तो जब इनका जिसमें मुबारक जब मैयत को उठाया गया उहद के दामन में, उस वक्त आप सल्लल्लाहु ने हुक्म दिया था कि जितने भी शोदा हैं उहद में जितने भी शहादतें हुई हैं ये सब मदीने पाक के जन्नतुल बकी में दफन हो गए तारीख में। लेकिन हुआ क्या, जब हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह की लाश मुबारक को जिसने मुबारक को उठाया गया जिसने मुबारक को, तो उहद पहाड़ भी साथ चलने लगा। इश्क कहते किसको, अभी तो हमें इश्क की आयन भी नहीं पता, वो तो हम जो आजकल हो रहा है समझ रहे हैं शक यही इश्क है, असल इश्क होता क्या और उसकी भी तो पहचानो। उसके बाद हुआ क्या, सहाबा कराम हैरान हो गए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम ये क्या माजरा है, इनकी जब जस्ते खाकी उठाया जा रहा है तो उहद पहाड़ चलने लगा। अब जवाब सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता और हम इससे, आशिक रसूल था उहद पहाड़ और आशिक अमीर हमजा रजी अल्लाह का गम में था, ताजियत में साथ चलने लगा। अब जहरी बातें कहते हैं उहद पहाड़ कई किलोमीटर पर मुहित है, अब वो मदीना में अगर चला जाता उहद पहाड़ तो जमीन ही फट जाती, एक भूचाल आ जाता। फिर आपने हुक्म फरमाया इन सब की तकसीम मेरे चचा की भी यही उहद के दामन में करो, फिर सारे जो शोदा थे और हजरत अमीर हमजा रफी की तकसीम वही उहद के दामन में जो लोग जाते हैं देखते हैं तो फिर वही तकसीम हुई। ये मुकाम होता है आशिकीन का कि पहाड़ भी आशिक निकला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके घर वालों का, और ये जन्नत से पहाड़ है उहद पहाड़। इसके बारे में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ये पहाड़ जो होगा जन्नत में, जन्नत के रिसेप्शन पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा इंसानी शक्ल में। इश्क ने कहां से कहां पहुंचा दिया। गालिब ने कहा था ना, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना काम के हम भी थे बड़े आदमी, काम के बहुत काम के आदमी, लेकिन इश्क कमबख्त ने निकम्मा कर दिया। तो ये दुनिया का जो इश्क होता ना छोकरियों का, ये आदमी को निकम्मा बेकार बेहिश जंग लगा देता है, लेकिन अल्लाह रसूल का जो इश्क होता है ये मुकामात को बढ़ा के कारामत कर देता है। निकम्मा होगा तो कारामत हो जाएगा, और अल्लाह रसूल को तो अगर दिल दे दिया तो उसकी कीमत क्या लगी, उसकी कीमत क्या लगी, पहाड़ की, इंसान, फिर मुसलमान, फिर जन्नत, फिर रसूल अल्लाह का साथ, और फिर जन्नत के रिसेप्शन पे इस्तकबालिया पे खड़ा होगा हसीन और जमील नौजवान की शक्ल। क्यों, उसने दिल कहाँ दिया था, इश्क किससे इश्क किया था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके चचा से। इसी तरह खजूर की टहनी का वाकया, इश्क के ऊपर बात हो रही ना, और किस किस ने, फिर इंसानों ने नहीं चाहा, फिर जन्नात ने नहीं चाहा, लकड़ियों ने चाहा, पेड़ों ने चाहा, दरख्तों ने चाहा, शजर और हजर ने चाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक खजूर की चौड़ी टहनी थी जिसपे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर पे टेक लगाया करते थे, तो सहाबा कराम ने मशवरा दिया कि अरसा में चुप्पी होगी आपके, थोड़ा सा हम एक पक्का एक सुतून सा बना देते ताकि आराम से टेक लगा लिया करें। तो आपने इस राय को पसंद फरमाया, हुक्म दे दिया ठीक है कर लो ऐसा। तो वो लकड़ी का जो खजूर की जो एक शाख थी चौड़ी थी उसको उठा के कहीं मस्जिद नबी में कोने में कहीं डाल दिया, और पुख्ता एक सुकून बना के मट्टी गारे वगैरह का जो भी था बना दिया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए उस मिंबर के ऊपर बैठे, तो अचानक किसी के बिलक बिलक के चीख चीख के रोने की आवाज आई, लेकिन रोने वाला नजर नहीं आ रहा। तलाश किया गया, कुछ नहीं पता चला। फिर आप सल्लम उठे, तशरीफ लेके कोने में गए, देखा वो लकड़ी का जो टहनी थी खजूर की वो आंसुओं से रो रही है, अल्लाह ने उसको जुबान अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ खजूर की तने तू क्यों रोता है, क्या गम है तुझे। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात का गम है कि आपकी कमरे मुबारक से मैं मस हुआ करता था, आपका जिस्म मुबारक मुझसे टच होता था, क्या मजा था, क्या सुरूर था, आपने अपना कुर्ब खत्म कर दिया, मुझे अपने से दूर कर दिया, इस गम में फूट फूट के रो रहा हूं। अब उस खजूर के छोटे से तने ने कहां दिल दिया, किससे इश्क किया, आखिर दो जहां, अब उसकी कीमत बढ़ना शुरू हुई। अब पूछा जा रहा है आखिर दो जहां, पूछते बोल क्या अल्लाह से दुआ करूं, क्या चाहता है। अब निबातात में से उसका ताल्लुक था, पूछा मैं अल्लाह से दुआ करूं तुझे बहुत ही आलीशान एक बड़ा खजूर का दरख्त बनवा दूं, और उसमें से खूब, जिसमें से तेरे दरख्त में से खूब खजूर हैं। कह दिया था उसी के आलम में जाके बात की। उसने कहा नहीं यार सल्लम, मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं, तो क्या चाहता है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि तुझे जन्नत का दरख्त बनवा दूं अगर तू कहे तो। उसने कहा नहीं यार सल्लम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लोगों, इस वाक़े के बाद फरमाते हैं नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लोगों उम्मतियों मुसलमानों इबरत हासिल करो कि तुम लोगों से अच्छे तो वो खजूर का तना निकला। वो क्या कह गया, कयामत तक के लिए उस खजूर की टहनी कहती है रसूल सल्लम, मुझे दुनिया और आखरत में कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुनिया और आखरत दोनों जगह आपका साथ चाहिए, अपने से अलग ना कीजिए मुझे, जहां आप वहां मैं, बस और कुछ नहीं चाहता, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपने कहा अच्छा ठीक है। फिर आपने कब्र खुदवाई वहीं मस्जिद नबी में छोटी सी, और फिर अपने प्यारे मुबारक हाथों से उसकी तकफीन करी, दफन किया, उसे मट्टी डाली और उसके हक में दुआ करी। और फिर उसके बाद जो है मुहद्दिसीन उस वाक़े में लिखते हैं हवालों के साथ कि वो भी हसीन और जमील नौजवान की शक्ल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में हुआ, वो खजूर की शाख। बताइए खजूर की शाख, हम पहाड़ इंसान बन रहे हैं, खजूर की लकड़ी की टहनी जो है वो इंसान बन रही है, ना फिर इंसान फिर मुसलमान फिर जन्नत फिर आसलम का साथ। ये क्या दिखाना, क्या दिखा रहे हैं अल्लाह पाक, गौर किया कभी हमने इन वाक्यात के पीछे क्या राव है। ये तो इंसान भी नहीं थे भाई, पहाड़ तो पत्थर का होता है, खजूर की टहनी तो लकड़ी की होती है, इंसान मुसलमान फिर जन्नत। पता है क्या चला कि हम जिस पर फिदा हो रहे हैं, जिसको दिल दे रहे हैं, ये देखना पड़ेगा हम फिदा कहाँ हो रहे हैं, उस हिसाब से हमारी कीमत लगेगी। कोई अल्लाह रसूल पे फिदा हो रहा है, अल्लाह रसूल का इश्क रखता है, तो कायनात में अल्लाह रसूल से ज्यादा मोहब्बत वाला इज्जत वाला कोई नहीं है। तो जो अल्लाह रसूल पे कोई फिदा होगा, अल्लाह रसूल से जब इश्क करेगा जानी सच्चा दिल इश्क, तो फिर उसकी कीमत भी उस हिसाब से बढ़ेगी। अल्लाह रसूल से कोई बड़ा नहीं, तो जो अल्लाह रसूल का आशिक होगा तो मखलूक में अल्लाह पाक उसको बड़ा बना देंगे। क्योंकि ये बड़े बड़ी हस्तियों पर फिदा हुआ है, तब उसको बड़ाई मिलेगी। आरी बात सुन, अल्लाह रसूल पर फिदा हुआ, अल्लाह रसूल का आशिक बना, अब ऐसे लोगों से दुनिया इश्क करेगी क्योंकि ये अल्लाह रसूल के आशिक थे, आशिक बनेंगे। तो होता है क्या है कि मंजिल जो हमारी डेस्टिनेशन होगी उस हिसाब से कीमत लगेगी, हम कहां जाके मरे, किसको दिल दिया, उस हिसाब से हमारी कीमत या तो बढ़ेगी या घटेगी। सही है भाई, अल्लाह ना करे उन रानी बदकार जो लोग होते हैं वो औरतों के चक्कर में मरते रहते हैं, जिना करते रहते हैं सारी जिंदगी, तो उनकी कीमत वहां से लगेगी। पेशाब पखाने के मुकाम पे मरे गटर रहने, तो पूरी जिंदगी इसी में गुजारी और मौत मर गए, तो इन बिचारों का क्या असर होगा, क्या इनकी कीमत होगी। क्योंकि बरज़ख में देखा जाएगा इसने दिल कहाँ दिया हुआ था, बरज़ख में जो देखा जाता है ये देखा जाता है इसने दिल कहाँ दिया हुआ था। दिल तो अग्नि मूतने वालों को दिया होता, औरतों को, लड़कियों को, लौंडों को, अमरदों को, अकलामबाजी के मरीज होते हैं, छोटे बच्चों को बस खाली करते हैं, जहाँ से पखाना निकलता वो उनका मुकाम इश्क होता है, यही होता है ना। आजकल बड़ा ये यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में सुनने में आ रहा है, अखबारात में भी आ रहा है, ट्रांसजेंडर के ऊपर बड़ी बातें हो रही है, लाइसेंस इशू करने की बातें की जा रही है, बाकायदा गवर्नमेंट को मजबूर किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है कि लाइसेंस इशू किए जाए जो यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं, मेल टू मेल अलग काम करना, बदफाली जो कौमे लूट वाला मर। तो मुकाम इश्क उनका क्या है, पखाने का गंदा मुकाम, जहाँ से बू निकलता है, पखाना निकलता है, वो आशिक है, उस जगह के आशिक है। तो भाई उन कमबख्तों का फिर क्या मुकाम, क्या उनकी फिर इज्जत होगी, क्या अजाब ना है कम है, फिर कौमे लूट वालों को जो वही तो बता रहा हूँ कि हम समझ रहे हैं कि हम इश्क कहाँ कर रहे हैं, उस हिसाब से दुनिया और आखिरत में हमारी कीमत लगी। कौमे लूट वाले आशिक बने थे किसके, अल्लाह रसूल के नहीं बने, लूत अलैहिस्सलाम के नहीं बने, लौंडों के बने थे, जहां से पखाना निकलता उस मुकाम के बने थे, फिर अल्लाह ने क्या अजाब नाजिल किया, पूरी बस्ती को उठाया फरिश्तों ने और फिर ऊपर ले गया आसमानों में, फिर उसको उल्टा किया, उस बस्ती को उल्टा करके फिर पटखा इसको, और फिर उसके बाद हर मुजरिम के लिए एक पत्थर था जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था, और फिर पत्थरों की बारिश अलग अल्लाह पाक ने बरसाई थी, और लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो भी अजाब का अजाब का शिकार हो, क्योंकि नबी की बीवी होने के बावजूद उसके बड़ी गंदे मामला थे, वो बीच में एक तरह से मिडिल मैन का काम करती थी, अगलामबाजी में लड़कों को घेर घेर के लेकर आते थे, बस खाली के काम में मामूल मददगार बनी हुई थी। तो अल्लाह ने फरमा दिया था लूत अजाब वालों में तुम्हारी बीवी भी शुमार हो, जल्दी बस्ती को छोड़ के निकलो, जब फरिश्ते आए थे घर में अजाब देने के लिए, तो कहा था लूत अलैहिस्सलाम आप फौरन बस्ती को छोड़ के निकलिए, बस थोड़ा सा टाइम है और ये भी पूरी बस्ती तबाह होने वाली। तो फिर अल्लाह ने क्या अजब नाजिल किया था, यूं अजाब आए उनसे कि उनका मुकाम इश्क की डायरेक्शन गलत हो गई थी, इसलिए बर्बाद हुए दुनिया और आखिरत में। आज भी जो कितने लोग होते हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, काफिर भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, कितने ऐसे लोग हैं इश्क सब रखते हैं, अल्लाह का इश्क सब रखते हैं, लेकिन काफिर क्यों कहलाते हैं, दिल में मोहब्बत है अल्लाह की। हिंदू भी अगर है तो भगवान की पूजा करता है लेकिन मोहब्बत रखता है, मानता है पूरी कायनात को बनाने वाला भगवान है, लेकिन दायमी जहन्नम क्यों मिलेगी, अपने रब से मोहब्बत करने के बावजूद, खुदा को मानने के बावजूद जहन्नम रशीदों का। वजह क्या है कि इश्क करने का जो तरीका, ढंग, जो कैफियत, जो चीजें थी वो शरई नहीं थी, उसने अपनी तरफ से बुत गढ़ लिया उनका, ये हमारा खुदा, बस इस वजह से शिर्क मुशरिक बने और दायमी जहन्नम में मरेंगे, वरना मोहब्बत अल्लाह में सब करते हैं, डायरेक्शन गलत होने की वजह से। तो पता चला खाली इश्क काफी नहीं होगा अगर इश्क की डायरेक्शन सही नहीं हुई, इश्क भी रखना है और उसकी डायरेक्शन भी वैसी रखनी है जो अल्लाह रसूल का हुक्म है। किसी के बाप की जागीर नहीं, हमारी नहीं चलेगी, नफसानी ख्वाहिशात की नहीं चलेगी कि मैं जिस तरह से चाहूं अल्लाह और रसूल के ऊपर फिदा हो जाऊं, ऐसा नहीं होता भाई। जिस अल्लाह ने आके दो जान नबी पाक हम उम्मत को अता फरमाए, तो उनसे मोहब्बत करने का ढंग भी सिखाए, अदब भी बताए, तरीका भी बताए, सब कुछ शरीयत में आ चुका है, अंदाज होते हैं इश्क और मोहब्बत करने के। इसी तरह वहां मुसीरी रहमतुल्लाह का वाक्य हुआ, अंजामी रहमतुल्लाह का वाक्य हुआ, एक आशिक रसूल गुजरे सदियों पुराने, उनका नाम था सैयद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह, आले रसूल में से थे। तो कुछ यूं वाक्य अल्लाह को इसी माफ फरमाए, ये भी शेखुल हदीस ज़िक्रिया साहब रहमतुल्लाह ने फवाइल हज में लिखा है, फवाइल अमाल, फवाइल सफात, फवाइल हज में ये वाक्य आया है, ये भी और भी उलमा मशाइख ने बहुत किताबों में लिखा। जब ये रोज़े रसूल पे गए तो किसी को पता चला वहां पर ये सादात में से, तो कुछ कोई हासिद शख्स था, अरे यहाँ बहुत देखे हैं सैयद, अपने आप को सैयद कहने वाले, तो किसी ने उस पर तंज किया, अगर वाकई आप सैयद है ना तो यहाँ से जवाब आना चाहिए। आप सलाम करते ना, सलाह को सलाम पेश करते हैं आका दो जहां सलम को, बस ये गलबा हाल तारी हो गया, तो गुस्सा नहीं आया, तो बड़ाई नहीं आ गई। बहरहाल वाक्य थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है अल्लाह की मशीनों पर, मैं बहरहाल जो किताबों में यही है असल क्या वाक्य तो अल्लाह को ही पता है, लेकिन हाँ जो असल जो चीज़ है वो सब मानते हैं। जब उन्होंने सलाम किया रोते असलाम रसूल अल्लाह, तो फिर जवाब आया वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बेटे, और फिर जवाब ऐसा आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ लहदे मुबारक से निकला और मुसाफा किया हजरत कबीर सैयद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैहि, और कहते हैं मस्जिद नबी में उस वक्त 70,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे जिन्होंने खुली आंखों से इस करामत का उन बुजुर्ग की मुशाहदा किया, मस्जिद नबी रोशन हो गई थी मस्जिद। इसको सदियों से उलमा मशाइख इस वाक़े को बताते जा रहे हैं, ये होते हैं आशिकीन। और फिर आगे अब गहरी बात है परचाउट हो गया, दुनिया ने देख लिया यारी तो वो बहुत बड़ी हस्ती है जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक निकल के बाहर आ गया, मुसाफा किया, जवाब भी सबने सुना, तो लोग दौड़ के उनसे चिपटने के लिए आने लगे। अब उनका हाल देखिए, देखा लोग तो मजमा मेरी तरफ दौड़ के आ रहा, मेरा रास आउट हो गया तो जमीन पे लेट गए, लेट गए लोग हैरान कह रहे थे आप जमीन पे आप लेट गए, हम आपसे गले मिलने आ रहे हैं। पर मैं कहीं मेरे दिल में तकब्बुर बढ़ाई ना आ जाए कि रसूल अल्लाह ने मुझसे हाथ मिलाया है, मेरे ऊपर से मुझे फैलांगते हुए मुझे कुचलते हुए गुजरो ताकि बढ़ाई खत्म हो जाए। उठ के उन्होंने मुबारकबाद नहीं वसूल करी, जमीन पे लेट गए वो कि मेरे ऊपर से मुझे फैलांगते हुए गुजरो, ठोकरे मारते कहीं ऐसा ना हो तकब्बुर ना आ जाए मेरे अंदर, इतने इतना बड़ा वाक्य हो गया। फौरन बुजुर्ग ने अपने तकबूर का राज किया, तकबूर नहीं आता लेकिन ये एक सबक दे गए, सबक दे गए। तो ये थे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये इश्क ऐसे नहीं होता है, इसके लिए पीछे तकवे से जिंदगी गुजारनी पड़ती है, हर अमल सुन्नत नबी सल्लम के हिसाब से गुजारना पड़ता है, मुजाहदात की भट्टी में कुंदन बनने के बाद फिर ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं। अब चूंकि पहले दौर के मुजाहदात कुछ और थे, हम लोग आजकल कम ईमान और यकीन रखते हैं, हमारी हर चीज में कमजोरी और कमी है, तो जरूरी नहीं कि हम भी हजरत कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैहि फैज करेंगे, जामी रहमतुल्लाह अलैहि फैज करेंगे तो वहां से कुछ हरकत होगी, नहीं। अल्लाह इस दौर के जो हम लोग हैं, अल्लाह रसूल को पता है कि आजकल का कौन सा दौर चल रहा है, 2025 चल रहा है, मोबाइल का दौर है, टच मोबाइल का है ना, इसमें लड़कियां बाइकें चला रही हैं लोगों की तरह बैठ के, है ना। अब तो लड़कियां बाइकें चला रही थी, पीछे लड़के बैठे होते हैं उनके साथ, तो सबको पता, अल्लाह को पता, आप इस्लाम को भी पता है, सब नामा अमाल रसूल अल्लाह तक पहुंचाए जाते हैं, आपकी उम्मत ही आजकल ये अमाल कर रहा है अच्छे बुरे। तो अब इस दौर में अगर कोई मौलाना जामी रहमतुल्लाह जैसा इश्क या कबीर रफाई जैसा इश्क, इमाम बुखारी जैसा इश्क अगर 1% भी वैसा इश्क कर ले तो इंशाल्लाह हमारा काम बन जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, उस हिसाब से हम नहीं भी कर पाए। उंगली कटा के शहीदों में तो नाम आए, उंगली तो कटाएं शहीदों में नाम आ जाएगा, कुछ तो करें। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, सुन्नतों पर अमल। अभी इस मौजूद है इश्क रिसालत हासिल कैसे होगा वो भी इंशाल्लाह बराए बता दूंगा, अभी कुछ वाकयात आ रहे हैं। अल्लाह और कोई वाक तो आशिकीन की बात होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लोगों की भी बड़ी परवाह होती है, जो अपने आशिकीन होते हैं, आशिकीन होते हैं रसूलुल्लाह से इश्क करने वाले, फिर आप सल्लम को उनकी परवाह भी बहुत होती है, उनके गमों को अपना गम समझते हैं, उनकी तकलीफों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तकलीफ समझते हैं। हमारे पीर भाई हैं, उनका जवान बेटा 20 साल का अल्लाह को प्यारा हो गया, 3 बहनों को इकलौता भाई, ना बीमार ना कुछ भी नहीं, रात में सोया सुबह खत्म, अल्लाह वाला बच्चा, हाफिज कुरान, आलिम बन रहा था, बहुत ही प्यारा बच्चा, अल्लाह वाला बच्चा, मुत्तकी परहेज़गार। और जहरी बात है माँ बाप तो रो रो के बुरा हाल हो गया उनका, इतना रोए इतना रोए कि 1 महीना 2 महीने 3 महीने हो दोनों बाप को सबर ना आए, उनका जिस्म का वजन कम हो गया दोनों का। फिर नबी पाक आफ़िज़ हो जाओ सलम की हौर में ज्यारत और आशिक रसूल दोनों में भी पूरा घराना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम दोनों मियां बीवी अपने बच्चे का इतना गम क्यों करते हो? वो मेरे साथ है, आप बताओ क्या बीवी गम है तुम्हें, कोई तकलीफ है? वो हयात है, उनसे मेरी मुलाकात भी रहती है, उनसे जिन्होंने खौफ देखा और खातून से अहलिया की मुलाकात होती है, मौजूद है माशाल्लाह, जिंदा है, उन्होंने आखिर अता फरमाया। लेकिन जब जख्म लगा तो फिर मरहम भी कहाँ से लगा, मरहम भी कहाँ से लगा? और एक दफा नहीं, गालिबन दो तीन दफा आके आपसे सलम ने उनको बशारत दी है, बहुत मजे से तुम्हारा बच्चा बहुत खुश है, जन्नत में बहुत आला दर्जात में, और मेरे साथ है। अब भी तुम लोग क्या गम करोगे? अकली दलील दे रहे हैं, मेरे साथ है जन्नत में, फिर तुम किस बात का गम करते? लेकिन माँ तो माँ होती है ना, बहरहाल फिर बेटे की भी ज्यारत हुई माँ को या वालिद को। वालिद बेटे ने कहा कि आप लोग अल्लाह वाले हैं, मेरे वालदैन आप लोग इल्म वाले लोग हैं, लेकिन मैं आपको चाके भी नहीं बता सकता, बरज़ख के मामला, खबर के मामला चाके भी नहीं बता सकता। ये तो इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, ये समझ लें दुनिया को ऐसा था जैसे एक अंडा, इस तरह से कहा। ये तो बहुत बड़ी दुनिया है बरज़ख, और यहाँ वो मजे हैं, वो याशी हैं, वो कैफ और सुरू, वो मस्ती है, ना मैं बता सकता हूँ जुबान से, ना आप लोग समझ पाएंगे। लिहाजा आप लोग परेशान ना हो, टेंशन ना रखा करें, ना मुझे याद किया करें, भूल जाए मुझे, इंशाल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी, मैं बहुत मजे से हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद माँ को सुकून आया। ये अल्लाह पाक एक पुराने वाकयात नहीं बता रहा, जामी रहमतुल्लाह के जिसको आए मेरे साथ मिल भी सकता चल, तो ये इस दौर में भी हो रहा भाई। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आशिकीन होते हैं, अगर उनको कोई तकलीफ आती है फिर वहीं वहां से फिर मरहम लगाया जाता है, उनको तन्हा और तड़पता हुआ रोता हुआ नहीं छोड़ा जाता। तो ये सिर्फ पुराने किस्से नहीं है, ये अभी के वाक्यात हैं, अभी के वाक्यात। कहाँ तक बताएं, एक बुजुर्ग थे, इंतकाल होने लगा, उनके दो बच्चे थे, शादी देर में हुई थी, गालिबन को उनका करीब अजीज वगैरह भी कोई नहीं था, फिक्र हुई कि मैं मर जाऊंगा मेरे छोटे बच्चों को कौन देखेगा। फिर उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई कौम में, और इरशाद फरमाया क्यों गम करता है, जैसे तेरे बच्चे वैसे मेरे बच्चे, क्यों गम करता है, यानी मर जा, अगर मरना है अल्लाह के भरोसे में बैठा हुआ तुम मैं हूं तो से, जैसे तेरी औलाद है वैसे मेरी भी, मत गम कर, तसल्ली आ गई बस, आका जिसको तसल्ली दे दें तो क्या बचा। ये कहलाते हैं आशिकीन, इश्क अदना आला को मुतवज्जे कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है आला हस्तियों को, अगर उसकी तलब में सच्चाई है, अगर इखलास है और उस पर इश्क अगर सच्चा है। एक इश्क मिजाजी में किसी माजी में एक शायर ने कहा था, इश्क अगर सच्चा है तो तुझे आना होगा, तुझको आना होगा, तुझको आना होगा, आना भी एक अचानक हुआ, कुछ अशार जहन में आ गए। लेकिन भाई ये इश्क मिजाजी में इश्क सच्चा बच्चा नहीं होता, ये नापाक इश्क होते हैं सारे, बस ये सारा इश्क मिजाजी का जो होता है ना, ये होता है जब तक इंसान नापाक नहीं हो रहा, सारी मोहब्बतें सारे बुलंद बांग दावे उस वक्त हैं जब तक दोनों नापाक नहीं हो रहा, बस दोनों नापाक हो गए और फिर उसके बाद नफरत का इजहार शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो इश्क हकीकी जो होता है, इसका ताल्लुक पाकी से होता है, इसका ताल्लुक तकद्दस से होता है, और जो जो वक्त गुजरता है इश्क मिजाजी के इश्क में जो होती है नापाकी के बाद जो होती है वो ठंड ठंड पड़ जाती है, ठंड पड़ जाती है, फिर आदमी का शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाहता, और वक्त के साथ इश्क कमजोर होने लगता है। लेकिन इश्क हकीकी में जोश रोज बरोज बढ़ता है, अल्लाह के आशिक की हर दिन एक नई शान होती है, हर लम्हा एक शान होती है उनकी, तो वक्त के साथ साथ उनके इश्क में तग़य्युर होता है, चेंजिंग होती है, उनकी भड़ास नहीं निकलती, बल्कि इश्क की बेकरारी में और इजाफा होता रहता है, अल्लाह और रसूल से जो इश्क होता है और उसमें मजीद तरक्की होती रहती है, और शराबी नहीं होती, यहाँ तक कि अल्लाह का आशिक अल्लाह रसूल के इश्क में के दौरान उसकी मौत वाकई हो जाती है, और उसकी मौत वाकई हो जाती है, लेकिन वो इश्क के समंदर को साहिल को गुर नहीं कर पाता, वो इश्क के दरिया को, उसमें उसकी मौत वाकई हो जाती है। ये तसव्वुफ में कहलाता है सैर इल्लाह, सूरह कुबूत की आखिरी आयत है, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिशें करते हैं, मुजाहदात करते हैं, हम उनको जरूर बिल जरूर अपने रास्ते दिखाएंगे, अपने कुर्ब के जन्नत के, अल्लाह ने वादा फरमा लिया सूरह कुबूत की आखिरी आयत, अल्लाह ने वादा फरमाया जो भी मुजाहिदा करेगा हमारे रास्ते में हम अपने रास्ते जरूर दिखाएंगे, अल्लाह का रास्ता इस्लाम का रास्ता, जो कोशिश करेगा जुहद करेगा अल्लाह कह रहे मैं रास्ते खोल दूंगा। सुबूलना, इसकी मुहद्दिसीन ने तफसीर, मुहद्दिसीन ने शायद की क्या करिए, हजरत वाले ने इसकी तफसीर बयान की है मुख्तलिफ हवालों के साथ, इसमें अल्लाह ने वादा था सुबूत देना, एक दरवाजा नहीं सैकड़ों हजारों दरवाजे खोल दूंगा अपने तक पहुंचने के कुर्बे इलाही के दरवाजे। हजरत ने फरमाया फिर एक ऐसा मुकाम आता है कि अल्लाह का वली कुतुब बन गया, आरिफ बिल्ला बन गया, गौस बन गया, फिर वो अल्लाह की जात और सिफात में मुशाहदा करता है वो अल्लाह का वली। ये हर एक की सुन में नहीं आती ये बात है, ये उलमा और मुफ्तीहान कराम के फतवे हैं, कोई इख्तलाफी बात नहीं है। क्या कहलाता है लोग सैर इल्लाह, अल्लाह की जात और सिफात का मुशाहदा करते हुए सैर करता रहता है। लेकिन अल्लाह की बात को कौन भाई कबूल कर सकता है, मुकम्मल कर सकता है, यहाँ तक कि उसमें मुस्तगरिक रह के अल्लाह काशी एक वक्त आता है कि वो अल्लाह की सैर इल्लाह पूरी नहीं कर पाता और उसकी मौत का वक्त आता है और चला जाता है। बस अल्लाह की जितनी बड़ी जात लामहदूद है, कोई उसकी जात को उसकी जात तक को आखिरी अंजाम तक नहीं देख सकता। बस जिसको जितना भी हिस्सा मिला बकदरे अपने ज़र्फ, अपने मुजाहिदा, अपने तकवा, अपना शौक, अपनी लगन, अपने अपनी जतन और अपनी जस्तजू के हिसाब से मिला, जो भी चंद कतरे मिले जिसको, कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने राज पा लिया। नहीं, जिसका जितना औकात थी, जिसकी जिसका जितना ज़र्फ था, उतना उसने पैमाना भर लिया उस समंदर में से, बस कोई दावा नहीं कर सकता। अल्लाह की बात बहुत बड़ी है। भाई अब ये सारी चीजें जो है इश्क रिसालत की हासिल कैसे होंगी, सवाल ये पैदा होता है आखिर में कि हम अल्लाह के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक कैसे बनेंगे, ये छींटे हम पे कैसे पड़ेंगे, ऐसी कैफियत हमारी कब बनेगी। हजरत माज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का गवर्नर बना के भेज रहे थे और आपने इरशाद फरमाया माज़ अब तुम मदीने आओ तो शायद तुम मुझको नहीं पाओगे, यानी मेरा विसाल शायद हो चुका हो। ये सुनकर हजरत माज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। अब जब रोने लगे तो आपने उनको तो तसल्ली दी थी, लेकिन क़यामत तक के लिए एक बहुत बड़ा राग आउट कर गए। आपने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ माज़ एक बात याद रखना, उसे मेरा खास कुर्ब मिलेगा, उसे मेरा खास कुर्ब मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो और कहीं भी हो। दो चीजें इरशाद फरमाए, एक तो मेरा खास कुर्ब मिलेगा उस शख्स को चाहे वो कोई भी हो, कोई भी से मतलब सिर्फ ईमान होना शर्त है, चाहे अरबी होना जरूरी नहीं है, अजमी हो, कोई भी जुबान बोलने वाला हो, साहिब ईमान हो, उसे मेरा खास फुर मिलेगा चाहे वो कोई भी हो और कहीं भी हो। कहीं भी यहाँ फासले खत्म कर दिए, वहां रंग और नस्ल खत्म किया और दूसरी चीज खत्म करी आसन ने फासले, कहीं पर भी हो उसे बैठे बैठे वहीं घर बैठे उसे मेरा फुर मिल जाएगा। पूछा रसलम को कौन खुश नहीं हो, फरमाया मुत्तकी को, तो जो मुत्तकी आदमी जो होगा उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास फुर मिलेगा और रसूल अल्लाह के इंतहाई करीब होगा चाहे वो कहीं पर भी हो और कोई भी हो। शर्त ये तकवा होना चाहिए और ऐसा हो नहीं सकता तो मुत्तकी और सुन्नतों पे चलने वाला ना हो। तकवा आते ही सही मानों में इश्क रिसालत सिस्टम में डूब के एक एक अमल सुन्नत के मुताबिक करने का ये बात। अब सुन्नत पे भाई चलना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई इश्क रिसालत का दावा करे और सुन्नतों पे ना चले तो उस पर इश्क रिसालत कबूल नहीं होगा, नहीं होगा। तो सच्चे आशिकीन की पहचान ये होती है कि वो हर अमल में सुबह उठने से लेके बिस्तर से नहीं उतरते, पहले उनको पता होता है मेरे प्यारे आका ससन जब उठते थे सुबह को तो सबसे पहले एकदम से नहीं उठते थे, पहले अपनी आंखों को रब किया करते थे, आंखों के पपोटे होते हैं ना ऐसे ऐसे करते जाते, फिर ऐसे जैसे हम आंखों में चीपड़ निकालते हैं ना, हम निकालते हैं आप सलम की तो आंखें पाक थी, लेकिन आप सलम ऐसे उंगलियों को उंगलियों साफ किए करते हैं और फिर उसके बाद हाथों को आप सलम मसलते थे, रगड़ते थे आपस में देंगे वो, और फिर उसके बाद चेहरे के ऊपर मलते थे दो तीन दफा, फिर उसके बाद चंद सेकंड के बाद बिस्तर से उठते थे दाएं करवट से। तो जो आशिक रसूल होगा सच्चा वो इसी तरतीब से उठेगा, दुआ पड़ेगा मसनून दुआ सुबह उठने की, फिर उसके बाद पानी पिएगा, उसको पता है कि आप सलम बैठ के पानी पीते थे, तीन सांस में पीते थे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पीते थे, पढ़ के फिर पानी पीते, तो वो उसी तरतीब से करेगा, खड़े खड़े धरे की तरह पानी नहीं पिएगा, घटाघट खाना खाएगा तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं खाएगा आशिक रसूल, उसको पता है कि मेरे आका का तरीका ही नहीं, वो तो आप बैठ के खाते थे, वो दस्तरखान लगाएगा फिर खाएगा, वो गैर शरी तकरीबात में नहीं जाएगा जहाँ मूवी तस्वीर होती है, जहाँ औरतें और मर्दों का मखलूत माहौल होता है, जहाँ लड़कियां औरतें बेपर्दा नी मूरियां लिबास पहनकर आती हैं, जहाँ सब एक दूसरे की बहन बेटियों को देख रहे होते हैं। इन शौहरों को भी पता होता है मेरी बीवी पे 10 लोग नजर डाल रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, क्योंकि शौहर साहब तो अक्सर खुद लगे हुए दूसरों की बहन बेटियों के साथ। बीवी भी आजाद, शौहर भी आजाद, बाप भी आजाद, बेटी भी आजाद, भाई भी आजाद, बहन भी आजाद, सब आजाद है। ये आशिक रसूल होते हैं, ये आशिक रसूल होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐसी मजलिस जहां अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हैं मत जाओ। कौन कह रहा है ये? ये कोई मौलवी साहब नहीं कह रहा है, मुफ्ती साहब नहीं कह रहा है, शेख साहब नहीं कह रहा है, ये हमारे प्यारे आकेदुजान जिनकी नहीं कायनात बनी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद बात फरमाई, ऐसी जगह जहां गुनाह हो रहे हो वहां मत जाओ। जो आशिक रसूल होगा मर जाएगा, जान दे देगा, जाएगा नहीं ऐसी जगह, अपने अख्तियार से जहां तक हो सकेगा बचेगा, क्योंकि पता है मेरे आका के हुक्म की नाफरमानी हो रही है। तो जो आप के एक एक हुक्म की इतबा करते हैं वो कहलाते हैं सही मायने में आशिक रसूल। और सच्चे आशिक रसूल की एक पहचान ये भी होती है कि रसूल अल्लाह सलम के लाए हुए दीन में बिगाड़ नहीं डालते। ऑफिस में मेरे एक दोस्त थे, उनकी एक पुरानी सी मैंने घड़ी देखी, बहुत ही पुरानी और गली हुई सी और बदनुमा इंतहाई लग रही। मैंने उनको ये बोला, मैंने यार ये दूसरी आप घड़ी ले रहे हैं यार, बेतकल्लुफी भी थी, मजाक किए मैंने छेड़ा। कहेंगे इसके पीछे का राव है, बहुत लोग मुझे बोल चुके हैं। मैंने क्या राव है? कह रहे हैं यार ये मेरे अब्बा की निशानी है, और अब्बा इसको पहनते थे और बस उसके बाद से मैंने रखी है। कह रहे हैं अगर मैं उसका डायल चेंज करवाऊँ या उसका पट्टा चेंज करूंगा तो उसकी जो असल ओरिजिनलिटी है वो नहीं रहेगी जो अब्बा के दौर की थी। तो अब्बा की घड़ी तो नाम की रह गई, अब्बा पहनते थे, पट्टा बदल दूं, डायल बदल दूं, ये बदल दूं, वो बदल दूं, सुइयां बदल दूं, शीशा बदल दूं, तो भाई तो फिर असल घड़ी कहाँ रही अब्बा वाली? वो तो खत्म हो गई। तो इसलिए मेरा अब्बा से जो इश्क मोहब्बत है गवारा नहीं करता, अब्बा की घड़ी में मैं तब्दीली लाऊं, चेंजिंग कर दूं, मुझे बस सुकून उसमें मिलता है कि ऐसे ही रखूं इस घड़ी को जैसे अब्बा पहना करते थे, जैसे अब्बा के दौर में घड़ी। तो जो सच्चा आशिक रसूल होगा रसूल अल्लाह के लाए दीन में कभी भी बिदअतें नहीं निकालेगा। ठीक है, मेरे आका का लाया हुआ दीन है, मेरे बाप का लाया हुआ दीन नहीं जिसमें मेरी चले, जिसको मैं ऐसे ही रखूंगा जैसे मनोहन रसूलुल्लाह आका रसूल ने हमें पेश किया, जिस तरह से हमें भेजा उन्होंने दीन को, बस ये आशिक रसूल की पहचान होगी। रसूलुल्लाह की इत्तेबा करेंगे और सुन्नतों में चलेंगे और सिर्फ वही दीन की बातों पर अमल करेंगे जो रसूलुल्लाह से साबित है, जो आका दो ने हुक्म दिया, अल्लाह रसूल का हुक्म है, आल असहाब ने जिनकी इत्तेबा की, और बस जो काम अल्लाह रसूल अल्लाह का हुक्म नहीं है और आपलम और आल असहाब ने नहीं किए, सच्चे आशिक रसूल वो काम नहीं करते। इन चीजों का सबूत ही नहीं है तो मैं कैसे करूँ? ये कहलाती है तारीफ आशिकीन की, कि जो आशिकीन होते हैं वो अपने महबूब के नक्शे कदम पे चलते हैं। आशिकीन जो होते हैं अपने महबूबों के नक्शे कदम पे चलते हैं, निशानात के पीछे पीछे चलते हैं, अपनी तरफ से कोई लाइन ड्रॉ नहीं करते। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, जो जिसने मेरे लाए हुए दीन में नाराजगी के साथ फरमाया, तो जिसने मेरे लाए हुए दीन में कोई बिदत निकाली और दीन में नए नए इजाफे किए, ऐसी चीजें डाली जो मैं नहीं लाया था, उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम में बना। भाई आशिक रसूल होना ये अल्लाह को पता है कौन आशिक रसूल है। रसूल अल्लाह सल्लम के पास भी रजिस्टर है जिसमें उसमें आशिक इश्क रिसालत में जो डूबे हुए लोग हैं उसमें उनका नाम इंटर हुआ हुआ है, इंदराज हुआ हुआ है। असलम को पता है कौन मेरा सच्चा आशिक है, पता है आप असलम को, और जो आशिकीन है उनको भी पता चल जाता है कि हमारा नाम आप असलम के रजिस्टर में है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा जोश में, दोनों तरफ से इशारे हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए। दुनिया को पता हो ना हो हमारे इश्क का, ना पता हो, दुनिया से कोई मतलब नहीं है आशिकीन को। जिससे मोहब्बत की जा रही है उसको तो पता है हम उसके आशिक हैं, उसको तो पता है हमारे महबूब को हम मर रहे हैं उस पर, और उसको भी पता है हमारे महबूब को कि हम उस पर मर रहे हैं। दोनों तरफ से इशारे हो गए, दुनिया को पता होना हो, दुनिया को पता होना हो तो आशिकीन का रजिस्टर वहां आके दो जहां सदस्यों के पास मौजूद होता है, पता है उनको कौन एक नंबर आशिक है, कौन पाखंडी है, कौन इसके रिसालत पे नोट और वोट पकड़ता रहता है, सब पता है, सब पता है आप सदस्यों को। क्या समझ रहे हैं आप? एक अल्लाह के वलियों को कुछ फिलाम हो जाता है, अल्लाह पाक कितनी चीजें जब चाहते हैं हया कर देते, तो आकिद वसल्लम का क्या मुकाम है? जो इमामुल अंबिया कायनात के सरदार, उनके इल्म का आपका क्या, आपका कहना क्या कहना? तो भाई दुआ करें अल्लाह पाक हमें रसूल अल्लाह सल्लम का सच्चा आशिक बना ले और एक एक अमल सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। शुरुआत तो करें भाई, कम से कम भाई सुन्नतों में बैठ के अमल करेंगे इंशाल्लाह, बैठ के खाना खाएं कम से कम। घर वाले नहीं मान रहे तो बातें कोई लोग सुनाए बुरा मत माने। इसका आसान तरीका बता देता हूँ कि भाई लोग नहीं आ रहे, सोबत आपको मिल रही है, घर वालों को नहीं मिल रही। घर वाले भले डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएं, आप जो यहाँ पर आ रहे हैं वो अपना अलग दस्तरखान लगाओ, बैठ के खा लें। आरी बात सुन में तो इंशाल्लाह दो चार महीने नहीं गुजरेंगे आपके इस तकवे और मुजाहिदे की बरकत से, चंद दिनों में पूरा घर जमीन पे बैठ के खाना खा रहा होगा। कोई इत्तला तो करे, शुरुआत तो करे, हिम्मत ही नहीं पकड़ते लोग। इश्क रिसालत इसे कहते हैं कि महबूब की हर अदा की नकल करता है जो आशिक होता है, ये है सबसे बड़ी बात। अल्लाह, और भाई इश्क रिसालत मिलेगा कहाँ से? सुन्नतों पे अमल करने से और तक़वा से, दुरूद सलाम पढ़ने से, नाज शरीफ पढ़ने से, कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ने से, आप इस्लाम के इश्क और वाकयात पढ़ने से, यहाँ से इश्क बढ़ेगा। दुरूद सलाम पढ़े वहां से फिर तबादला शुरू होगा, एक वक्त आता है तबादला शुरू हो जाता है मोहब्बतों का। इन साथ में तक़वे से जरूर रहना, क्योंकि आपने इरशाद फरमा दिया था उसे मेरा खास खुद मिलेगा, मेरे इंतहाई करीब है, चाहे वो कोई भी हो कहीं भी जो मुत्तकी होगा। तक़वे के ऊपर बात आ रही है, फिर दोबारा तक़वे पर बात आ रही है भाई। और ये सारी चीजों की तौफीक कहाँ से मिलेगी? सुन्नतों पर अमल और ये तकवे की सारी चीजें किसी भी अल्लाह वाले से, जहाँ मुनासबत हो वहाँ ताल्लुक कायम कर लें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह वालों की सोबत की बरकत से अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला हमारे कल में भी इश्क रसालत का दरिया नहीं, समंदर नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर एक कतरे का भी सवा हिस्सा भी अगर हमें मिल गया इश्क रसालत का, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। भाई जो कुछ भी बोला गया सुना गया, अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, हमारा मेरे बैठना लगा रजा के लिए, किसी खुशी के लिए अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाते, हम सब की कामिल मफ़रत फरमा। या अल्लाह हम सबको सच्चे आशिक रसूल बना दे, या अल्लाह सही दीन पे चलने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह उसी दीन पे चलने की तौफीक अता फरमा जो दीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पेश किया, जिस पर आल और अस्हाब ने अमल किया। अल्लाह उसके बाद जो गुमराही और फितने का जो दौर शुरू हुआ है, अल्लाह उन फितने जो अभी तक चल रहे हैं और क़यामत तक चलते रहेंगे, अल्लाह उन तमाम फितनों से और राह से भटकाने वाली जो राहें, अल्लाह हम सबको और हमारे अहल व याल को बचा के रख, सिरात मुस्तकीम पे हम सबको चलने की तौफीक अता फरमा, सच्चा आशिक रसूल बना दे, हर सुन्नत पर जान लड़ा के अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब करीम खोखली बातों से, झूठे दावों से, झूठे इश्क रिसालत से अल्लाह पाक शोबाबी से, रियाकारी से, दिखावों से अल्लाह पाक इस तरह सी गैर इखलास वाली जितनी भी चीज़ें अल्लाह पाक उन सब से हमको बचा ले। और जो आशिकीन, जो आशिक मौला अल्लाह, जो तेरे आशिकीन की जो सिफात होती हैं और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिकीन की जो सिफात होती हैं अल्लाह, सारी की सारी सिफातें हम जैसे अदना लोगों को भी, मामूली लोगों को भी अल्लाह पाक अता फरमा दे। या रब करीम हाजरीन मजलिस में से जिसके दिल में जो भी जाए साजात हैं अल्लाह तू जानने वाला है, हम सब की जाए साजात को पूरा फरमा दे। या अल्लाह जो भी आए महरूम न जाए, दुनिया भी बना दे, आखिरत भी बना दे, हम सबको अपना आशिक बना दे, अपने महबूब का आशिक बना दे। या अल्लाह या रब रहीम हाजरीन मजलिस में से अल्लाह पाक जो भी परेशान हाल हैं, जितने भी परेशान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाओ, तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली नसीब फरमा, तमाम मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा, तमाम परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, बिलखसूस जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा कुल्ली नसीब फरमा। अल्लाह कुछ लोग बीमार हैं उन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह उन सबको शिफा कुल्ली नसीब फरमा। अल्लाह वर्ष का नामो निशान मिटा ले, अल्लाह उन सबको कामिल हिदायत नसीब फरमा, जब फरमा। अल्लाह एक साहब हैं जाब साहब, उन्होंने अपने लिए और अपने बेटों की दुआओं के लिए कहा है, दुआ करें अल्लाह उनको तमाम मकासद दे, हसन में कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह उनके बेटे के गुस्से जुनून को ख़त्म फरमा दे, आफियत सुकून अता फरमाए। या रहमान रहीम, या अल्लाह मेरे वालिद साहब की और मेरे मुर्शिदीन की और हमारे जिंदा मोमिन की, कुल मोमिनीन मोमिनात की, कुल जिन्नात की और मेरे सास ससुर की, अल्लाह सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा, सब की कब्रों को नूर से भर दे। खातून हैं मुसलसल मुख्तलिफ बीमारियों में चल रही हैं, दुआ करें अल्लाह पाक उनकी तमाम अमराज से निजात दे, शिफा कुल्ली नसीब फरमा, तंदुरुस्ती आफियत लंबी उम्र अता फरमा। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
you